पृष्ठ संख्या 226। मैं महंगू हूँ, पैरों की धरती आकाश को भी चली जाए मैं कभी न बदलूँगा, इतना महंगा हूँगा। इतिहास की इसी गहरी समझ और जनसाधारण में अपनी अनंत आस्था के कारण निराला इस संपूर्ण सामाजिक सत्य को किसी असमाप्त नैराश्य में ले जाकर नहीं छोड़ते। जनसाधारण में उनका यह आत्मविश्वास मार्क्सवाद के सिद्धांतों का उल्था नहीं लगता, बल्कि भारतीय परिस्थितियों के यथार्थ के निकटतम लगता है। वह सामान्य की इस सार्वजनिक कलात्मक प्रतिष्ठा में पूरे मन से विश्वास करते हैं, नारेबाजी के स्तर पर नहीं। इसीलिए वह वेश रूखे, अधर सूखे, दीन जीवन, हीन चितवन में नहीं छोड़ देते। वह उसे राज चेतना की राह में ले जाकर खड़ा कर देते हैं। वह मसूरिया और बलई का उठना बखूबी जानते हैं। वह जानते हैं कि जनता बलतोड़ की तरह दुख रही है। अब चाहे उसे कितनी भी परतों के अंदर क्यों ना ढांको, वह बलतोड़ दुखता रहेगा, बढ़ता रहेगा। उसे दबाना अब किसी भी तरह संभव नहीं है। राज चेतना की राह रोक कर लोग खड़े हुए, कामयाब हुए, दुश्मनों के पैर ना जमने दिए, बालों के नीचे जनता बलतोड़ हुई। इतिहास और समाज की इसी पहचान के बीच निराला कविता को सर्वथा मुक्त करते हैं। उनका शब्द बंध यहाँ बिल्कुल नया है और कहीं भी भाषिक संरचना संबंधी उस तरह की घुसपैठ नहीं झलकती जिसका जिक्र हम तोड़ती पत्थर के संदर्भ में कर चुके हैं। दरअसल नए पत्ते और कुकुरमुत्ता की कविताओं द्वारा निराला ने हिंदी कविता के लिए सर्वथा एक नए शब्द भंडार की रचना की है। वकले, भुचुंबी, तुम्बी, हिलगी, परदेश, टिन्ना, जमाल, अबरू, गबरू, खमदार, गढ़ही, झोले, लिवारा, गिरदान, पिलौधा, बहलिया, गिरा, बलतोड़, सकरपाला, जमूरा, छड़, कड़ा, परकिए, खारुओ, झारे बहारे, भामन, तड़का, भड़का, मटका, बड़का, गरिथार, तिनकौड़ा, गिरे गले, हवाबाज, मूसर, दूसर, दई, किरिया, चपड़ा, ग्रेजुएट, बैरिस्टर आदि हजारों ठेठ शब्दों का एक नया शब्दकोश निराला ने तैयार किया है। इस शब्द संग्रह से भी अधिक महत्वपूर्ण उन शब्दों का प्रयोग है। ये शब्द जबरदस्ती या चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं लाए गए हैं, बल्कि इस नए शब्द भंडार को पुराने अभिजात शब्द भंडार के समक्ष एक चुनौती के रूप में पृष्ठ संख्या 227 रखा गया है। उनसे कलात्मकता के नए और सर्वथा अछूते आयाम का उद्घाटन निराला ने किया है। हजारों सालों से गुदड़ी में छिपे हुए शब्द जब अपनी सारी शक्ति और अपरूप अनूठी सुंदरता के साथ कविता में आते हैं तो उनकी चकमक चमक देखते ही बनती है। यहाँ आकर निराला यह समझ चुके हैं कि सिर्फ छंद मुक्ति से ही कविता की मुक्ति संभव नहीं है, बल्कि उसके लिए सदियों से जनसाधारण की अदृश्य खानों में पड़े उन शब्द रत्नों को खोद कर साफ करके उन्हें इस्तेमाल करना होगा। सदियों से वर्जित जनसाधारण के उन्नयन और कला में उसे प्रतिष्ठित करने के लिए उसी के आत्मीय शब्द बंध को काव्य में पिरोना होगा, उसी की सपाट गद्यात्मकता के सौंदर्य को उतारना होगा। नए पत्ते की कविताओं द्वारा निराला ने यही किया है। इसीलिए ये कविताएं भाषा, संवेदना और अर्थ सभी स्तरों पर हिंदी की भविष्य कविता की सूचना देती हैं। काव्य अभिजात्य इस मुक्ति के प्रयास में सर्वथा जिस नूतन काव्य की सृष्टि निराला ने की है उसे आगे चलकर उन्होंने क्यों त्याग दिया, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। यद्यपि आगे आराधना, अर्चना, गीत गुंज और सांध्य काकली में भी कहीं कहीं इसकी गूंज सुनाई पड़ती है, लेकिन उनका यह स्वर छीण हो गया है। इन काव्य रचनाओं द्वारा निराला अपने अंतः संगीत की गहरी एकान्विता और संश्लिष्टता से अर्थ के बाह्य प्रसार की ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। अर्थात वह अपने एकांतिक मौन संगीत की गहरी गूंज से व्यापक जन भूमिका पर उतरते हैं और कविता को सर्वथा एक नए अर्थ और नए रचनात्मक सौंदर्य से अभिसिंचित करते हैं। लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे इस मुक्ति से भी वह मुक्त हो गए हैं और अपनी निजी प्रार्थना भूमि पर लौट आए हैं। संभवतः जनसाधारण का जो ऊर्जा युक्त आस्थाशील प्रसंग निराला ने उठाया था, भारतीय मनुष्य के भविष्य का जो सपना उन्होंने मसूरिया वलई और महंगू के माध्यम से देखा था, वह आज़ादी के बाद उन्हें पूरा होता नज़र नहीं आया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के चरित्र का जो द्वैत उन्होंने देखा था, वह सच निकला। उनके आजू बाजू बैठे हुए जनता के परंपरागत शोषक और अत्याचारी फिर भेष बदल कर आ बैठे। राज्य के समाज का जादू फिर से एक बार चल गया और निराला की भविष्योन्मुखी आस्था शायद एक बार फिर गलत साबित हुई। इसी ऐतिहासिक और राजनीतिक मोहभंग के कारण निराला इस लोक भूमि से उठकर फिर अपने अंदर के दरवाजे की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए अपने अंतिम संग्रह सांध काकली में जब फिर उस जनसाधारण की याद उन्हें आई, तो उन्होंने उसके नैराश्य और दैन्य का बड़ा ही पृष्ठ संख्या 228 हृदय विदारक चित्र उपस्थित किया। उसे पहले की तरह फिर उन्होंने समर के लिए ललकारा नहीं। गहरी विभावरी शीत की कांपी पाले से अरहर की डाली गुनागरी पूर्ण विराम ब्रैकेट में शीत की मटर चने कुछ काम न आए, जो गेहूं लड़ते अरगाए माचे पर किसान का कुकर कुकहाया सिहरी पूर्ण विराम शीत की प्रातः पात गात झुलसाई खड़ी रही जैसे परछाई नीली रेखा मुख पर छाई सुध सारी बिसरी पूर्ण विराम ब्रैकेट में शीत की सूख गया किसान एकाकी रोया रही न लेखा बाकी कर्म धर्म को करके साखी दुहरी डगर भरी पूर्ण विराम ब्रैकेट में शीत की। नैराश्य का यह चित्र निराला के मोह भंग का बड़ा ही गहरा प्रभाव छोड़ता है। इस संबंध में संभव है जो कारण मैंने बताए हैं वह सही न हो, लेकिन इतना तो सच है कि उनका यह स्वर इतना सशक्त योगदान कविता और इतिहास की यह नई और अनूठी समझ धीरे धीरे तिरोहित होती गई है और वह भक्ति के नूतन पुरातन प्रसंगों पर फिर उतर आए हैं। इस तरह निराला अपने अंतः संगीत से अर्थ के अपार प्रसार और लोक भूमि से होते हुए फिर उसी सनातन मौन में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं।